कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 131 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो
आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं त्रिभुवन तिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं वक्षे अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी।
यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है उसमें हम चार तीन दिन से ये दूसरी पुस्तक को देख रहे हैं और उसमें हमारी 10 भावना होने के बाद अभी हम बोधि दुर्लभ भावना को देखते आए हैं। हम आज कुछ पृष्ठ क्रमांक 5 पर आए हैं और वहां लिखते हैं, देखें यहां कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव धर्मनी दुर्लभतानो विचार करे छे। धर्म का अर्थ क्या लेना यहां, अपने स्वरूप का सही ज्ञान, बोधि है ना। वैसे तो धर्म जो है वह चारित्र गुण की स्वभाव पर्याय है, वितरागता, लेकिन उसको कब हम कंसीडर करेंगे कि जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए सही जो का त्यों, तो उसको कहेंगे धर्म। तो ये धर्म प्राप्त करने के लिए कितनी दुर्लभता है उस बात की यहाँ चर्चा चल रही है। कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव धर्मनी दुर्लभतानो विचार करे छे। सम्यक दर्शन अनंत कालवा पूर्वे एक सेकंद पन प्राप्त नथी करियूं, ते प्राप्त करमू जीव ने महा दुर्लभ छे। पहला तो देखो, आपने कभी एक कांच का ग्लास जो ग्लास होता है वो आधा पानी से भरा है तो उसको दो अपेक्षा से देखा जाता है। कोई कहेगा आधा भरा हुआ है और कोई कहेगा आधा खाली है, तो कौन सही है? ख्याल में आया? अपेक्षा तो यहाँ क्या कहते हैं, इस जीव के सम्यक दर्शन महा दुर्लभ है। तो कोई जीव उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं अनादिकाल से, इसलिए कह रहे वह महा दुर्लभ है। लेकिन जीव को प्रिपेयर करना है, उसको बूस्टअप करना है, उसको प्रेरणा देनी है, तो कहेंगे अरे तेरी वस्तु है और तुझे कहीं ढूंढने के लिए अन्यत्र जाना ही नहीं है, जो तेरे पास ऑलरेडी है प्राप्त की प्राप्ति करनी है, बस नजर फिराने की ही आवश्यकता है। दृष्टि को बदलो, तुम जो स्वयं को मैं शरीर रूप हूं ऐसा मान रहे हो तो कहते तू ज्ञान रूप ही है ऐसा मान, तो यह बोधि जो है यह दुर्लभ है कहते हैं जरूर, लेकिन बस इतना ही तुझे करना है। इस तरह से उसको सराहना देते हुए बूस्टअप करते हुए ऐसा भी कहने में आता है। लेकिन यह जीव अनादि से उसका प्रयत्न ही नहीं कर रहा है, उस अपेक्षा से कहा वो महा दुर्लभ है, क्योंकि एकेंद्रीय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो किसी भी हालत में आत्मानुभूति हो ही नहीं सकती। और संगी पंचेंद्रिय हुआ तो क्या हुआ? संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये बात कहां से आई? इसलिए लोगों का ऐसा ही विचार होता है कि जिसको हम मना करेंगे ना तो वो करने की बहुत इच्छा होती है। हम जब हमारे शोलापुर के घर में रहते थे तो वहां 13 रूम्स थे हमारे बंगले में, 13 ये है ना, इतना तो हमारा बाथरूम था। तो हमारे घर में एक ऐसा रूम था कि जिसको ताला लगा हुआ था और सबको इंस्ट्रक्शन था कि कोई अंदर नहीं जावे। तो ताले की चाबी तो वहीं रखी है, लेकिन किसको अंदर जाने को परमिशन नहीं है। तो हर एक ऐसा ही सोचता था कि सब लोग घर के बाहर जाएं और मैं अंदर जाके देखूं तो सही क्या। वैसे यहां कह रहे हैं कि यह बहुत दुर्लभ है, तू नहीं प्राप्त कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बीच में तकलीफ होती है, नहीं मैं तो जरूर प्राप्त करूंगा, ऐसा करके वो प्राप्त करेगा। इसलिए उसकी दुर्लभता बता रहे, क्योंकि भैया अभी तुझे तो दुर्लभ इसलिए है कि तूने आज तक प्रयत्न नहीं किया है और अभी तो तुझे करना ही चाहिए, इसलिए अनदर वे ऑफ इंड्यूसिंग। देखो क्या कहते हैं, प्राप्त करू जीव ने महा दुर्लभ छे, पहला तो निगो दशा माती निकली ने त्रस पर्याय पाम भी दुर्लभ छे, ये तो अभी तक हमने ये पढ़ा था। कदाचित त्रस थयो तो तेमा पंचेन्द्रिय पणु पन तेमा पन संगी पणु पामवू दुर्लभ छे, पंचेन्द्रिय संगी पनामा पन नरक तीर्यंचना भयानक दुखो भोगवे छे, तेमा मनुष्यपणु बहु मोंगू छे, आत्मा शू अने सम्यक ज्ञान शू ते समझन अनंत काल मा जीव ने दुर्लभ छे। शू कीधु? एक बात तो साची छे, शू कीधा के आत्मा शू ने सम्यक ज्ञान शू ते समझन अनंत काल मा जीव ने दुर्लभ छे। मनुष्यपनु तो दुर्लभ छे पन सम्यक दर्शन तो तेना थी परम दुर्लभ छे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस जीव ने ये मनुष्यपना कितनी बार प्राप्त किया है अनादि से? ये अनंत बार। अरे शास्त्र में तो ऐसा कहते हैं, मुनिवृत्त धार अनंत बार ग्रेव का उपजायो, यानी सिर्फ मनुष्य हुआ नहीं है, उसने अनंत बार मुनि दशा भी धारण की है, खोटी मुनि दशा, क्योंकि अधिक से अधिक मुनि दशा यानी भावलिंगी मुनि कोई जीव प्राप्त करेगा तो 32 टाइम करता है, बाद में उसको मोक्ष होगा ही होगा, ख्याल में आया? तो यहां तो आनंद बार की बात करते हैं, उसकी तो बात छोड़ो, हमको क्या देखना है, पहले तो पहले मनुष्य होवे, जैन कुल में आवे और मुनि होने का भाव हो जाए, हमको कितने को आता है देखो। हमें स्वयं को कितनी बार आता है मुनि होने का भाव, ये बता रहे, मनुष्य पण तो दुर्लभ छे पन सम्यक दर्शन दुर्लभ छे, समझ में? तो कहते हैं मनुष्य पण दुर्लभ छे पन सम्यक दर्शन तो तेनाथी दुर्लभ छे, मुनिपने तो एनाथी दुर्लभ छे। पहला मनुष्यपनानी दुर्लभता बतावे छे, अभी तक क्या क्या असंगी पंचेन्द्रियपना, पहले तो अनंत काल निगोद, फिर त्रस पर्याय प्राप्त होना, त्रस पर्याय प्राप्त होने तो पंचेन्द्रिय पर्याय तो प्राप्त हुई तो क्योंकि असंगी तो बहुत बार हुआ, अभी तेरे को संगी पना होना चाहिए, तो संगी हुआ तो संगी पर्याय कौन कौन से गति में होती है भाई? पंचेन्द्रिय संगी पर्याय, संगी पंचेन्द्रिय पर्याय कौन से कौन से गति में होगी? मनुष्य पने में होगी कि नहीं? बस और किधर? नहीं। आप क्या कहते हैं? जोर से बोलो। अरे भाई भाई सुनो सुनो, इधर सुनो तो, से दिव्य ध्वनि खिल रहे बाबा। हाँ सुन बोलो बेन, क्या कहा आपने? कितनी गति बताई? चार गति में कौन कौन सी गति आई? हाँ तो सब में संगी पंचेंद्रिय होंगे, लेकिन तीरंजो में केवल संगी पंचेंद्रिय नहीं है, अन्य भी है, लेकिन अन्य तीन गति में सिर्फ संगी पंचेंद्रिय ही है। लेकिन अभी तक हमने तीरंज की बात देखी, उसके बाद नरक नाकी की भी देखी, और अभी कहते हैं मनुष्य पना जो संगी पंचेंद्रिय पना है वो कितना दुर्लभ है, उसकी बात अभी बता रहे हैं। हाँ 289 आगळ
देखो, आगळ कहे छे के ए नरक माथी निकली। पहले बताया था कि तीर्यंच हुआ, पंचेंद्रिय हुआ तो भी असंगी हुआ, तो महा मुश्किली से कोई पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय भी हुआ तो भी क्रूर तीर्यंच में जन्म लिया, तो वहां से मरकर वो नरक पहुंचा। अब आगे की कहानी ये सारे अपने पास्ट हिस्ट्री बता रहे अपना इतिहास है, कहाँ कहाँ हम इतना कहाँ कितना काल घूम के आए हैं वो बात यहाँ बता रहे हैं कि ए नरक माथी निकली तीर्यंच थाय तो त्या पण दुख सहे छे। नारकी तो असंख्यात है और वहाँ से तो कितने ही तीर्यंचों में जाएंगे, क्या नारकी कोई मनुष्य में आ सकता है? हाँ आ सकता है, कहाँ तक का नारकी आ सकता है? छठवें नरक तक के नारकी मरकर मनुष्य में आ सकते हैं, परंतु सातवें नरक का नारकी नियम से मरकर तीर्यंच में क्रूर तीर्यंच में ही जन्म लेगा। एक ऐसा भी रूल है नरक में से निकलकर कोई असंगी में नहीं जाएगा, कोई विकलत्र नहीं होगा, कोई एकेंद्र नहीं होगा, तो नियम से नरक के बाद संगी पंचेंद्रिय ही होगा, तीर्यंच हो या मनुष्य हो। तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, आज एक नई बात मुझे पढ़ने में मिली। हमने तो अभी तक देखा ना नारकी भी प्रत्येक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, ये तो हमने बहुत बार सुना है। पहले नरक में एक क्षायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात है, ये भी हमने सुना है। तो इस विश्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव कितने हो गए? असंख्यात। कहां पर? देखो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले तो मनुष्य होते हैं, वो तो संख्यात हो गए, मरकर कहां कहां जा सकते हैं? या देव में या नरक में। तो नरक में भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले है विद्यमान, असंख्यात। और देवों में भी, सौधर्म से लेकर ऊपर तक के देवों में भी, भवनत्रिक को छोड़कर, वहां भी असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले हैं, यानी नियम से अगले भव में तीर्थंकर बनने वाले हैं। ऐसे असंख्यात जीव पड़े हैं ये दोनों गति में, मनुष्य जो संख्यात होते हैं तो होते हैं, और ये जीव तीर्थंकर बनना चाहता है ना। मिथ्या दृष्टि है, क्या कहता है, सोलस भावना षोडश कारण भावना भाऊंगा और तीर्थंकर बनूंगा, यानी तीसरे नरक तक के जीवों की सत्ता है। पहले नरक के नारकी तो यहां से भी वो तो क्षायिक के साथ भी जा सकते हैं, परंतु बाकी नीचे तीसरे तक भी जीवों की तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव वहां जाते हैं। देखो यहाँ दूसरी बात हो रही है, अगले भव में मोक्ष जाएंगे क्योंकि उसमें से संख्यात ही मरकर आएंगे, और यहाँ आएंगे तो कहाँ कहाँ जन्म लेंगे, जहाँ तीर्थंकर होने योग्य है वो जीव संख्यात ही होंगे। मरकर आने वाले क्योंकि मनुष्य पर्याप्त में जन्म लेने वाले हैं, वो भी कर्म भूमि में, हाँ
काल लंबा है,
वो बहुत लंबा काल है सागरों का। तो नरक में अधिक से अधिक कितने सागर की आयु होगी तीसरे नरक में? हाँ तीसरे नरक तक तो नारकी है, पर तीन सागर से ज्यादा नहीं होगी इन जीवों को जो तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाले हैं।
तीन और कुछ समय होंगे,
लिमिटेड लिमिटेड क्यों, मरकर आने वाले लिमिटेड, बिल्कुल, पर वो कितने काल में होगी 170, उनकी आयु कितनी होगी? मैक्सिमम करोड़ पूर्व की, और वहां तो सागरों की आयु पड़ी है, तो एक सागर में कितने करोड़ पूर्व हो जाए, असंख्यात होगी ऐसे, अपनी अपनी आयु पूरी करके आएंगे, ऐसा भी नहीं, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। सबकी आयु एक साथ समाप्त हुई तो हमको डर है ना, यहाँ क्या होगा? नहीं होगे, हाँ तो असंख्यात वहां है विद्यमान, तो 170 क्रम से जन्मेंगे, वो देव में से भी कितने आएंगे? बहुत सारे तो देव में से आएंगे, नरक में तो कम होंगे, है ना? हाँ, अकेले नरक में असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले पड़े हैं, और वहां तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। हाँ, देखो अभी हम यहाँ की गाथा पढ़ेंगे, यहाँ तो दुर्लभता की बात चल रही है, वहां तो दूसरी बात हो रही थी। आगर कहे जे के नरक माथी निकली तिर्यंच थाय तो त्या पण दुख सहे छे। गाथा पढ़ेंगे, ये तिर्यक में यह सिंगल चाहिए। ततः निसृत्य पुनरपि तिर्यक जायते पापम तत्रापि दुःखम अनंतम वसहते जीव अनेकविधम। क्या कहते हैं? ततः निसृत्य, वहां से निकलकर, यानी वहां से मरकर, नारकी जीव मरकर, पुनरपि यानी दोबारा, तिर्यक जायते, तिर्यंच में उत्पन्न होता है, क्यों? पाप के कारण। तत्र अपि दुःखम अनंतम वसहते, वहां भी वह जीव अनंत प्रकार के बताया, दुख सहन करता है। हम कहे सहते तो उसके आगे वह लगा तो वसहते, उसका अर्थ भी वही होता है, सहन। विसर्ग उपसर्ग तो वी होना चाहिए था, यहाँ हम मूल पुस्तक में भी हिंदी में देख रहे थे 289 में, क्योंकि वी उपसर्ग लगता है, यहाँ वो कैसे लगा है? विसहदी, बहुत अच्छा, विसहते चाहिए। अनंतम विसहते, जीव अनेक विधम, हाँ क्या कहते हैं, जीव अनेक प्रकार के अनंत दुख वहां वो जीव तिर्यंच पर्याय में सहन करता है या उसको भोगने पड़ते हैं। ए नरक माथी निकली फरी तिर्यंच गति में उपजे छे त्या पण जेम पापरूप थाय तेमा जीव अनेक प्रकार ना अनंत दुख विशेषता पूर्वक सहे छे। विशेषता, इसलिए भी उपसर्ग लगा उसके पहले, भी सहते।
अनंत दुख की बात,
अनंत दुख की बात है, अनंत प्रकार के दुख। तिर्यंच के तो कितने होते हैं? मारन, ताड़न, बंधन, छेदन, अभी भूख की, प्यास की, ठंडी की, गर्मी की, कितने, वो तो परा हम देखते हैं। जैसे मनुष्य जैसा तो उनका जीवन नहीं है, मनुष्यों के भी है दुख, नहीं है वो बात नहीं है, परंतु तिर्यंचों में तो हम देखते हैं जन्म से ही लेकर वो उनके सारे दुखों की कहानी शुरू हो जाती है। कितने तो इंडे होते, उसी में तो कोई जीव उसको खा लेता है, उसमें से बाहर आते हैं तो उसमें से अन्य जीव उसको भक्षण कर देते हैं, कैसे वैसे बड़ा होता है, उसके लिए भी कितनी पराधीनता होती है उनकी सारी, और वहां भी पाप की बहुलता होती है। ऐसे नहीं वो बिचारा सहन कर रहा है, वो स्वयं भी और पाप कर रहा है वहां पर। हाँ, आगे पढ़ेंगे आप।
हाँ जी, अर्थ ए नरक माथी निकली फरी तिर्यंच गति में उपजे छे त्यां पण जेम पाप रूप थाय તેમ આ જીવ અનેક પ્રકારના અનંત દુઃખ વિશેષતાપૂર્વક સહે છે. નરકમાંથી નીકળીને તિરંચ થાય, ત્યાં માંસ ભક્ષણ વગેરે મહાપાપ કરીને પાછો નરકમાં જાય છે. જ્યાં અનંતકાળે મનુષ્ય થાય, ત્યાં પણ જો ધર્મ સમજવાની દરકાર ન કરે તો ફરી પાછો અનંતકાળ નરક નિગોદમાં રખડે છે. ઉંદર થાય ને બીજો તેના ઉપર ધગધગતું ગરમ પાણી રેડે, એ પ્રમાણે તિરંચ વગેરે ગતિના ભયંકર દુઃખો જીવ ભોગવે. મનુષ્યપનું પામ્યો ત્યારે દરકાર કરી નહીં. મુજે અભી યાદ આયા, યહાં તો કોણ સી બાત બતાઈ, યહાં તો યે બાત બતાઈ કે ચૂહે કે ઉપર ગરમ ગરમ પાણી ડાલતે હૈ ક્યોંકિ ચૂહા મર જાય ઉસકે. એસા મેને સુના હૈ, એ અપની જો બમ્બઈ મ્યુનિસિપાલિટી હૈ ઉસકો એક એક ચૂહા લા દેવે, મતલબ ઉધર જાકે જમા કરે તો ઉસકો કુછ પૈસે મિલતે. કિતને? 5 રૂપિયા. દેખો સબકો માલુમ હૈ. તો વો જો એક કોઈ મ્યુનિસિપાલિટી કા આદમી હોવે યા જો કોઈ આદમી હોવે, વો એસે ઘર ઘર મે જાકે વો પિંજરે દેતા થા. ઓર વો પિંજરે મે એક એક મે દો દો ચાર ચાર દસ દસ જો ભી ચૂહે આતે હૈ વો હમારે દુકાન કે સામને એક એક હાથ ડાલ કે ચૂહે કો પૂંછ સે પકડતા થા, બહાર લાકે ખટક ઉસકો મારતા થા, ફિર થેલી મે ડાલતા થા. મેને કહા એસે ક્યો કર રહા હૈ, અભી એસે જીવ કહાં જાયેગા બોલો. और ये तीरंच के जो अनेक प्रकार के दुखों में से एक दुख हमने देखा. अरे आप सुबह घूमने निकलो तो रास्ते में कितने तो चूहे मरे हुए दिखते हैं ऑन द रोड, फिर उस पर से गाड़ी जावे, क्या क्या चले, क्या क्या हो जाए. जो जिंदे हैं वो भी यहां से वहां क्रॉस करते उड़ते हैं. अभी अपने यहां कितने कुत्ते वगैरह तो बीच में मोटर के नीचे आते हैं, क्या क्या होता है, गाय भैंसे. और अमेरिका में तो हिरण बीच में आके मरते हैं. डियर डियर, यानी कौन से जीव का कैसा मतलब दुख होगा हमारे इमेजिनेशन के बाहर है और नहीं सोच सकते ऐसी बात. अभी आपको बताया ना, ये डिस्कवरी चैनल होता है, उसमें कभी देखा था हमने, एक साथ हजारों कछुए वो किनारे पे आते हैं और वहाँ इंडे डाल डाल के उसके ऊपर पानी ये करके क्या बोलते हैं, मिट्टी मिट्टी डाल के निकल जाते हैं, रेती. और वो जैसे निकल जाते हैं ऊपर से पक्षी आते हैं, वो बराबर इंडे को पकड़ के चोंच डाल के सब अपना काम कर लेते हैं. यानी हम सोच भी नहीं सकते ऐसे एक एक दुख तो तिरंच गति में है. तो हमने भोगे होंगे कि नहीं? हा? अच्छा चलो, आप कहते तो मान लेंगे. कहा देखो क्या यहाँ ए प्रमाणे, ये सेकंड पैराग्राफ की चौथी लाइन, तीरंच वगैरह गतिना भयंकर दुखो जीव भोगवे छे, मनुष्यपनु पाम्यो त्यारे दरकार करी नहीं. कोनी दरकार नहीं करी उंदरडानी ने, तो ये પોતાના સ્વરૂપને જાણવાની દરકાર કરી નહીં. એ કોઈ જો શું કહેવાય, વો બહોત ઉપયુક્ત હૈ, હમે અપની પહેચાન કરની ચાહીએ, એસા ઇસકો સપને મે ભી નહીં આતા. તો કહે રહે દરકાર કરી નથી.
તો પંચેન્દ્રિયો કે વિષય કિતને અધિક સે અધિક ભોગું ઇસકે લિયે વો હા સજગ રહેતા હૈ कि ये फिर दोबारा ये मनुष्यपन मिले कि नहीं मिले, फिर ये भोगने को नहीं मिलेगा. ऐसे भी कहने वाले फिर ये सारे उत्पन्न क्यों किए, किसके लिए हुए? हम नहीं भोगेंगे तो इसका क्या फायदा, एज इफ इसके लिए किसी ने उत्पन्न किया होगा. एक जैन बहन ने मुझे पूछा था, अरे हम कांदा नहीं खाएंगे, बटाटा नहीं, तो इसको उत्पन्न क्यों किया? अरे कोई उत्पन्न करने वाला है.
वो ऐसा ही मानते ना, कोई करने वाला धरने वाला भगवान है जो ये सारी सृष्टि निर्मित करता है. क्या करें, ऐसे मिथ्यात्व के भूसे भरे हुए हैं, लाकड़ा गड़ी गया छे, क्या बोलते हैं आप लोग?
हमने उसको बोला कोई मनुष्य भक्षण करने वाला ऐसा कोई होगा, हम फॉर एग्जाम्पल राक्षस मान लेते, ऐसे वो व्यंतर राक्षस कोई मनुष्य को नहीं खाते, परंतु जो स्टोरी में कहते ना राक्षस ने खाया, तो हम ऐसा ही कहेंगे मनुष्य, वो भी राक्षस ऐसा ही कहेगा मनुष्यों को क्यों उत्पन्न किया है, मैं खा लूंगा इसको, तो आपको चलेगा कि नहीं चलेगा? इन्हें अपने भोगों के लिए दलील कोई ना कोई करता रहता है।
मनुष्यपनु पामियों त्यारे दरकार करी नहीं, मनुष्यपनु पामी ने सत सांभळवा मळवू दुर्लभ छे, ने तेमाय तेनो निर्णय करीने सम्यक दर्शन करवू ते तो अपूर्व छे। एक जगह ढूंढने जीवतू बांधी ने अग्निमा शकरकंदनी जेम बाफता हता, भूंड याने क्या बोलते हैं पिग, उसको इधर मुंह से एक सली गरम सली डाल के पीछे से भाग से निकालते हैं और नीचे अग्नि करके उसके ऊपर उसको रोल करते हैं और उसको, तो क्या बताया उन्होंने, एक जग्याए, अभी कहाँ की जग्या उन्होंने देखी वो जाने, भूंड ने जीवतू बांधी ने अग्निमा शकरकंदनी जेम बापता हता।
हमने भी वो ब्यूटी विदाउट क्रिएलिटी में कितने कितने वो दिखाते कि प्राणियों को कैसे कैसे दुख पहुंचाते हैं खाने के लिए, या कोई उसमें से उनकी खाल निकाल के वस्तुएं बनाते हैं।
ये खरगोश होता है ना, खरगोश नए नए बच्चे अभी पैदा हुए उसको ऐसा पकड़ के, पूंछ को पकड़ के पानी में डुबो देते और उसके क्या कहते हैं ऐसा पूरी अंदर की बॉडी निकल, ऊपर की छाल निकाल लेते और उसका वो फर ये वो क्या क्या बनाते। ये ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नाम का एक शो आया था, इसमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई क्या क्या करते हैं लोग, यानी जैसे अपन पैर में से सॉक कैसा उल्टा निकालते हैं ना, वैसे अंदर की बॉडी तो वैसे की वैसी रह जाती है, ऊपर की छाल छाल निकल आती है स्किन, और उसको बहुत कीमत में बेचा जाता है और लोग उसके कपड़े वपड़े पहन के फैशन करते हैं, यानी अपने को बहुत सुंदर महसूस करते हैं लेकिन अपने अकल का दीवाला उधर प्रदर्शित करते हैं। क्यों? जीवो जीवनी दशा पन मनुष्य थईने आत्मानी दरकार न करे तेने संसार मा आवा अनंत अवतार थाय छे, यानी ऐसे जन्म बहुत बार उन्हें मिले हैं। सम्यक दृष्टि कहे छे कि हवे मारे आ अवसर गुमावो नथी, हूँ सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र दशा प्रकट करीश। इसका अर्थ क्या लेना सुशीलताई? हाँ बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन प्राप्त करते हुए मुनि दशा यानी चारित्र दशा यानी अपने स्वरूप में अधिक रमणता करने का अवसर उसे प्राप्त करना है।
बिकॉज सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं कहता चलो मुझे तो अभी सम्यक दर्शन हो गया चलो थोड़ी मौज मजा करेंगे, नहीं, उसको तो अभी और उसकी दुर्लभता पता है कि सम्यक दर्शन हुआ तो क्या हुआ, चारित्र दशा प्राप्त न उससे भी दुर्लभ है, तो उसके लिए वो अधिक से अधिक प्रयत्नशील रहेगा।
तो कह रहे हूँ सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र दशा प्रकट करी, वीतरागता ने केवल ज्ञान करीने हवे मुक्ति पामवानो छूं, हवे आ संसार मा आवा अवतार एटले आवा जन्म करवानो नथी। आगळ कहे छे के मनुष्यपनु पामवू महादुर्लभ छे, त्या पण मिथ्या दृष्टि बनी पाप उपजावे छे। पढ़ो साहब।
देखो ये पहली लाइन में सुष्टु और दुर्लभ में एक तो थोड़ा अंतर चाहिए, दुर्लभ में जो ल है वो सिंगल ल करना, डबल ल नहीं चाहिए, और लब्धवा ऐसे तीन शब्द है ना वैसे नहीं, लब्धवा लब्धवा इन्हें प्राप्त करके ब ध और व,
ये धक धक खोड़ो कर दो,
हाँ वो खोड़ो कर देना लब्धवा,
आधा ध आधा और वा पूरा
हुआ इतना तो आगे का बताऊं?
बता दो।
सेकंड लाइन में म्लेच्छा लिखे लिखा है, म्लेच्छा भवेत जीवा, तो वहां मिथ्या चाहिए, मिच्छा मिच्छा मिच्छो, जैसे हम कहते ना मिच्छो शासन है मिच्छो, हमने वो प्राकृत में पढ़ा था, वैसे मिच्छा है ना मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि भवे जीवा ऐसा वो है। म्लेच्छा लिखा है ना, म्ले के बदले मी करना, म्ले निकाल कर मी करना, तो मिच्छ आगे छ लिखा ही है, मिच्छा है ना मिथ्या दृष्टि होता है। हम अभी गाथा पढ़ेंगे। रत्नम चतुष्पथैव मनुजत्वं सुष्ठु दुर्लभं लब्ध्वा मिच्छा भवेत् जीव तत्रापि पापं समर्जयति। चतुष्पथेने चौराहा स्ट्रीट, हाँ, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, चौक जिसको कहेंगे मराठी में, तो चतुष्पथ है ने जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, जिसको हम स्ट्रीट कहेंगे या चौराहा कहेंगे। जैसे चौराहे में कोई रत्न प्राप्त होना जमीन पर पड़ा है रास्ते पर और हमें मिल जाए, तो ये तो असंभव जैसी बात है। इस उसी तरह से मनुजत्वम सुष्टु दुर्लभम, मनुष्यत्व प्राप्त होना भी खरेखर दुर्लभ है, ऐसा होने पर भी लब्ध्वा मनुष्यपना प्राप्त होकर, मनुष्यपना तो प्राप्त हुआ तो क्या हुआ अभी, मिच्छा भवेत् जीवा, यानी वहां भी वो मिथ्या दृष्टि ही रहता है और क्या करता है, तत्रापि पापम समर्जयति, वहां भी पाप की ही उपार्जन करना, यानी पाप ही कमाता है, कमाता है ने पाप ही करता रहता है। मनुष्य हुआ अत्यंत दुर्लभ में दुर्लभ, ऐसा मनुष्यपना मिला तो वहां मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है और नया पाप उत्पन्न करता है। देखो अर्थ देखते हैं, तिर्यंश माथी निकली, देखो पहले में पहले निगोद से निकला, अन्य एक इंद्रिय हुआ, बहुत मुश्किली से द्विंद्रियादि पर्याय प्राप्त हुई, अत्यंत मुश्किली से असंगी हुआ, उसमें से भी संगी हुआ तो क्रूर श्वापद हुआ, वहां से नरक में गया, नरक में से निकलकर तिर्यंश में आया, वहां कितना ही अनंत दुख प्राप्त किया और बाय चांस मनुष्यपना मिला, फिर भी वो मिथ्या दृष्टिपना उसने छोड़ा नहीं, शास्त्र का अभ्यास नहीं किया, अपना स्वरूप नहीं पहचाना, तो कहते और नया पाप उसने उत्पन्न किया। तो तिर्यंच माथी निकली मनुष्य गति पामवी अति दुर्लभ छे, जेम चार पंथ वच्चे रत्न पड़ी गयू होय तो ते महाभाग्य होय तो ज हाथ मा आवे छे, तेम मानवपनु दुर्लभ छे, वरी एवो दुर्लभ मनुष्य देह पामीने पण जीव मिथ्या दृष्टि बनी पाप उपजावे छे। देखो ऐसा कहते हैं ना, ये मनुष्यपना ऐसे ही खो देना कितना, यानी वो क्या कर रहा है, जैसे रत्न का हार है धागे में गूंथा हुआ, तो हमें क्या करना था, कोई पूरी बांधनी थी, धागा नहीं मिल रहा था, तो क्या किया, वो रत्न का हार तोड़ा, वो धागा लिया, पूरी बांध दी और वो फेंक दिए रत्न, हम क्या कहेंगे उसको, मूर्ख कहेंगे ना, ऐसे ही है। ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखा ना, कोड़ी को अमृत पान करावे और वो उसकी तरफ देखे भी नहीं, ये है वो ऐसे चिंतामणि रत्न भी किसी को, वो तो अवलोकन मात्र उसको देखे, वो अवलोकन भी नहीं करे, तो इसके अभाग्य की महिमा, वहां तो मोह की महिमा बताइए। भावार्थ, मनुष्यपन कदाचित थाय तो त्या म्लेच्छ खंड आदि मां वा मिथ्या दृष्टियों की संगति मां उपजी पापो ज उपजावे छे। यह हम लेच्छ उन्होंने अर्थ किया, परंतु मूल में उन्होंने मिथ्या दृष्टि की, भावार्थ में उन्होंने म्लेच्छ लिया है, परंतु वो मिथ्या दृष्टि बना रहता है।
देखो यहाँ पर दुर्लभता बतानी है ना, तो अभी तक तो इस जीव को उन्होंने अलग अलग गतियों में उत्पन्न किया है, नरक में से तीरंज में लाया और तीरंज के बाद अभी मनुष्य की बात बताई।
यानी उन्होंने इसमें ऐसा लिया कि मनुष्य हुआ तो भी म्लेच्छ हुआ और म्लेच्छ हुआ तो भी उसमें से आर्यखंड कभी कभी आर्य में जन्मा, तो उन्होंने म्लेच्छ जैसे अर्थ किया है उसका, परंतु मूल में मिच्छा लिखा है उन्होंने हिंदी में। आप आगे पढ़ें।
तो वहाँ कहते हैं मनुष्य माती निकली मनुष्य गति पामवी अति दुर्लभ छे। ये तो हमें मालूम है कि जैसे कालबा देवी या तुम्हारा कौन सा है भुलेश्वर आदि में किसी का एकाध कोई सोने की अंगूठी भी क्यों न गिरी हो और उसको एक घंटे के बाद याद आए कि अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई, तो जाके देखे तो मिले कि नहीं। तो कहते हैं अरविंद भाई, अरे तुम्हारे जेब से नोट नहीं खाली कागज भी गिर जावे कोई काम का और जाके देखे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कचरा वाले उठा के लेके जाते, तो वो अंगूठी को कौन छोड़ेंगे। तो कहते हैं रत्न पड़ी क्यों हो तो ते महाभाग्य हो तो ज आत्मा आवे, तेम मानवपणु एटले मनुष्यपणु दुर्लभ छे। वड़ी आवो दुर्लभ मनुष्य देह पामी ने पन जीव मिथ्या दृष्टि बनी पाप उपजावे छे। आप कहेंगे अरे भाई वो कौन सा पाप करता होगा, तो पहले में पहला महापाप कौन सा कर रहा है, मिथ्यात्व छोड़ नहीं रहा। तो मिथ्यात्व कोई महापाप है ये किसी को समझ में ही नहीं आती बात। देखो हम बहुत दूर कहाँ जाना है अपने को, हम अपने अपने घर में झांक के देखें, लोग क्या कहते हैं, क्या पागल है रोज उठ के उधर किधर जाता है। अरे उससे तो अच्छे हम क्यों साहब, क्या कर रहे हैं आप, हम तो कम से कम दुकान में जाके बैठते हैं, धंधे पानी पे तो कुछ ना कुछ करते हैं। अरे धंधा पानी क्यों करते हैं, अरे वहां बैठेंगे तो पैसा मिलेगा ना, सब कंट्रोल करते हैं हम वहां जाके। यानी देखो ये मिथ्यात्व का अतिरेक हो गया कि नहीं, मैं पर को संभाल सकता हूँ, पर की मैं कम मतलब पुद्गल को मैं ला सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, ये पैसा कमाने का भाव भी पाप है ओ। तो इसके लिए अन्य कोई खोटी संगति तो महापाप और खोटा पाप चला गया। पर ऐसे भी नहीं नहीं हम तो फिर घर में बैठे साहब कुछ नहीं करते, ज्ञाता दृष्टा है अपनी बात है। अरे जो अपने स्वभाव को स्वरूप को समझने की जानने की कोशिश नहीं करे और जाने नहीं, वो तो पाप ही पाप कर रहा है। अब उनसे तो और हम नजदीक आते हैं अपने तरफ, हम 24 घंटे में एक दो घंटे तो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं मान लो, हाँ बाकी 22 घंटे क्या करते हैं, अपनी अपनी सोच ना हो मुझे नहीं बताना। तो 22 मैं बोलता हूँ चलो ना और 2 घंटे दे देते हैं आपको, 20 घंटे तो क्या चल रहा है। यानी मनुष्यपनु मणियों ने पाप उपजावे छे, तो लोगों को लगता है कैसा पाप उपजावे छे, कैसा पाप उपजा रहे, बहुत पाप है, हर चीज की पाप ही पाप है चल रहा, क्योंकि मैं पर को परिणमा सकता हूँ या पर से मैं आनंद भोग सकता हूँ, अच्छा भोजन मिले तो मैं सुखी, ये सारा क्या है पाप परिणाम ही है। तो यहाँ कह रहे हैं देखो देखो आवो दुर्लभ मनुष्य देह पामी ने पन जीव मिथ्या दृष्टि बनी, तो अनादि से मिथ्या दृष्टि है ही और उसमें पहले से ही करेला और ऊपर नीम चढ़ा, समझते हैं करेला क्या टेस्ट कैसा होता है, और नीम कभी खाया नीम, हाँ नींबू नहीं ये नीम का झाड़ है, लिमड़ो रहते हैं, नहीं लिमड़ो नहीं लिमड़ो कड़वो नो है, रोज खाओ छो ने तमे,
नहीं नहीं ये तो कड़ी पत्ता लिमड़ो एटले
लिमड़ो ज कहवाय,
ना 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 कड़ू कड़ू नीम,
अच्छा कड़वो लिमड़ो खाओ तेज करेले एना ऊपर चढ़ी जाए तो केवो थाय मीठो थाय के नहीं,
चढ़ी जाए એટલે કરેલાની એની વેલ હોય, વેલ હોય ને વેલ ને શું કહો તમે વેલડી,
ચાલો
વેલ, હા
હવે એક મુહાવરા હિન્દી કો હું બોલના ભી મુશ્કિલ હો ગયા, હા तो क्या कह रहे हैं कि पहले से ही खोटा था। हाँ, पहले कैसा था? अग्रहित मिथ्यासी था। और उसमें क्या हो गया, कोई मिल गया ऐसा हमको सिखाने वाला, तो हम चले उनके पीछे, तो वो और डबल यानी ग्रहित मिथ्यात्व।
दूसरा भी मुहावरा है, मराठी का है, आधी तो बंदर तशात ही मध्य प्याला।
नहीं नहीं, आधी तो मरकट, मरकट यानी ही
आधी तो मरकट,
तशात यानी उसमें उसने क्या किया, दारू पी और वो पतरे के ऊपर जाके हाथ में ढोल लेके खड़ा हो गया, क्या होगा सोचो। ऐसा यह जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है और मनुष्यपना पाकर और अधिक डबल मिथ्यात्व होता है। मिथ्याजनों के साथ जाएगा, पांच पापों करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। हाँ सब आएंगे, आएंगे
बताएंगे
आएंगे। हाँ, क्योंकि देवगति सब अच्छे मानते हैं ना, तो उसको फाइनली देंगे शायद। अब देखेंगे क्या होता है। तो क्या कहा देखो, मनुष्यपनु पामी ने घना जीवो तो धर्म ने मानता नहीं। ये घर घर में ऐसी बात है। वो हमको मिले थे ना शुरू शुरू में, आत्मा आत्मा करते, कहाँ आत्मा है बताओ, कहाँ आत्मा है? कोई कहता है स्वर्ग नहीं, क्या बोलते है नरक नहीं है। ये तो सोसाइटी में सारे समाज को ठीक ठाक रखने के लिए ये ऐसे क्या बोलते है, हाँ हवा बनाया है कि तू खोटा काम करेगा तो देख, पांच पाप करेगा तो तू नरक जाएगा। तो बेचारा चुपचाप बैठ के सीधा काम करता है। अरे ऐसा दूसरे के कहने से कोई थोड़ी रहेगा। जिसको खोटा काम करना है वो दूसरे को पूछ पूछ के करता है क्या? कर ही डालता है वो। तो कहते हैं मनुष्यपनु पामी ने घना जीवो तो धर्म ने मानता नहीं। मनुष्यपनु पामे तेमा अनार्य थाय, यानी अभी ये म्लेंच गति में भेज दिया। एक लाइन गई बीच में। परलोक ने मानता नहीं ने धर्म नो अनादर करी ने महापाप बांधी नरक निगोद मा रखड़े छे। मनुष्य को पामे ते मा अनार्य थाय। मिथ्यादृष्टि पापी जीवो ना संगे पाप उपजावे, पन आर्यपनु अने सत्संग मळवो दुर्लभ छे। देखो हम पहले पहले हमको ये भी लोग पूछते थे, अभी कोई यहाँ से अंटार्कटिक या ऐसा जो नॉर्थ पोल इधर उधर कहीं जन्म लिया उसने, तो उस बेचारे को तुम्हारा वेजिटेबल किधर से मिलेगा? कौन है वो बेचारा? तो आप कहते कि नॉनवेज नहीं खाना, नॉनवेज हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं नॉनवेज नहीं खाना, मांसाहार नहीं करना, तो वो क्या करेंगे वहाँ? तुम्हारे जैसा आलू प्याज भी नहीं खाने वाले वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे भूखे। अरे भाई हम कहाँ जाएंगे उधर? हमको क्या क्या बोलते हैं आप लोग, काले कुत्ते ने काटा है क्या वहाँ जाने के लिए? नहीं, हमको तो वर्ल्ड टूर लेना है। हाँ, फिर वहाँ तो जरा कुछ दिन के लिए बाहर का खाने का जो मिले सो चलेगा। जो जानता है कि मुझे ये खाना ही नहीं तो वो या तो स्वयं की व्यवस्था करेगा या तो जाएगा ही नहीं सबसे अच्छा। लेकिन क्या करे, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि अनार्य था है, तो ये अनार्य जो हुए हैं तो कहते हैं और बता दे क्या है, सभी लोग अनाज खाएंगे तो किसी को पूरा ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इनको खाते हैं। देखो कैसी दलील करते, यानी अपन खोटा काम करे और उसको ग्लोरीफाई करे, फिर लोगों के ऊपर मेहरबानी करते, आप लोगों जैसे तुमको अनाज खाने को मिले इसलिए हम ये खाते हैं, मालूम है ऐसा। ये अनार्यपनु कोई अनार्य देश की गरज नहीं है, यहाँ बैठे बैठे अनार्य बहुत है क्या। मिथ्या दृष्टि पापी जीवो ना संगे पाप उपजावे, पन आर्यपनु अने सत्संग मळवो दुर्लभ छे। पहले तो आर्यपना मिलना, यानी हम अभी अच्छे अच्छे आर्य देश में पैदा हुए हैं, ये हमारे पाप का उदय होगा कि नहीं? और वो अंटार्कटिक में नॉर्थ पोल में साउथ पोल में जो जन्मते हैं वो वहाँ भाग्यशाली होंगे ना? अरे तूने ऐसे करतूत किए हैं इसलिए वहाँ संयोग मिला है भाई, ख्याल में है ना। आगळ कहे छे, मनुष्य पण थाय अने आर्यखंडमां पण उपजे तो पण त्यां उत्तम कुळादि पामवा अति दुर्लभ छे। अभी लोग कहते हैं हमें तो विदेह क्षेत्र में ही जाना है, यूं साहब क्या करेंगे? नहीं नहीं हम विदेह क्षेत्र में जाएंगे। तो हम लेंज खंड में जाओगे तो क्या करोगे? क्योंकि वहां भी एक नहीं पांच लेंज खंड है, जिसको हम अनार्य कहेंगे देश। देखो आगे
291 नंबर। अथ लभते आर्यवत्वम तत्र नापि प्राप्नोति उत्तमं गोत्रम् उत्तमकुले अपि प्राप्ते धनहीनः जायते जीव। कदाच वो म्लेच्छ खंड के बदले आर्य खंड में भी उत्पन्न हुआ, आर्य कुल में भी जन्मा। लिखा है ना अथ लभते आर्यवत्वम, यानी आर्यपना प्राप्त हुआ। तो कहते तत्र नापि प्राप्नोति उत्तमं गोत्र, वहां भी उसको उच्च कुल की प्राप्ति नहीं होती, यानी उच्च कुल में नहीं जन्मता। जैसे हमारा ये पूरा आर्यखंड ही है, परंतु हम देखते हैं ना कैसे कैसे, हाँ शेड्यूल कहो, क्योंकि उनके जो कोई ना धर्म की बात वहां सुनने को मिलती है, ना आचार विचार उनके है, खाना पीना उनका ऐसे ही मध्य मांस आदि चलता है, तो ऐसे कुल में जन्म हो सकता है। तो कहते वहां भी उसको उत्तम कुल की प्राप्ति नहीं हुई। उत्तम कुले अपि प्राप्ते, अभी आजकल ऐसा नहीं कह सकते कि उच्च कुल में जन्मा है तो इसमें बिल्कुल सदाचरण से रहता होगा, क्योंकि सो कॉल्ड उच्च भ्रू जिसको कहते हैं, उच्च कुल जिसको कहते हैं, हाई सोसाइटी, क्या क्या चलता है सबको मालूम है ना। तो उत्तम कुले अपि प्राप्ते, उत्तम कुल भी मिल जाए, धन ही न जायते जीव, वो दरिद्री उत्पन्न होता है या दरिद्री घर में जन्म लेता है, भले उत्तम कुल है परंतु धनहीन है, तो धनहीन होगा तो उसकी चिंता करते रहेगा, धन कमाने के पीछे चलेगा, तो उसको ये सुनने का और समझने का वो अवसर नहीं मिलेगा। अर्थ मनुष्य पर्याय पामी कदाचित आर्यखंडमा पौन जन्म पामे तो त्या उच्च कुल पामू दुर्लभ छे। कदाचित उच्च कुल मा पण जन्म पामे तो त्या धनहीन दरिद्री थाय अने तेनाथी काय सुकृत्य, ये सुकृत्य का अर्थ समझते है, कृत्य ने कोई कार्य, सु ने अच्छा कार्य, सुकृत्य ने अच्छा कार्य, यानी वो सत्कार्य कहो, सुकृत्य ने सुकृत्य लिखा उन्होंने, सुकृत्य नहीं लिखा, सुकृत्य नहीं बनता, पाप माज लीन रह जाए, यानी पुण्य के भी कोई कार्य नहीं होते उससे। अभी धर्म तो दूर रहो, ये शुभ भाव रूप भी कार्य नहीं होगे पाप में, क्यों? क्योंकि धनहीन है ना, तो उसी की चिंता में, उसी के संकलेश परिणामों में बना रहेगा। आगे
हाँ देखो, अभी सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि अर्थ वही का वही दिया है। कदाच आर्यखंड मां जन्मे तो त्यापन उत्तम कुल पामू दुर्लभ छे, खानदान कुल सारा माता पिता तथा धर्मनी लागनी वाला जीवोनो संग मळवो दुर्लभ छे। खानदान जीव ने पापनी लागनी थता पन शरम शरम लागे, ऊंच कुल मा अवतरी ने पन धर्मनी लागनी थवी ते दुर्लभ छे। उच्च कुल मा अवतरे त्यापन आखी जिंदगी पाप मा लीन रहे, धर्मनी लागनी उत्पन्न थवी ते पन दुर्लभ छे। पाप भाव मती नवरो थाय त्यारे कंईक सारू काम करे ने, पैसा वाला पैसा नी ममता ना पाप भाव मा सलवाना ने, दरिद्री जीवो पैसा कमावना पाप भाव मा सलवाना। ये तो समझ में आया, अनुभव की बात है। तेमाथी निवृत्त थई ने अंदर धर्मनी लागनी उपजावी ते दुर्लभ छे। आत्मानु काई हित करवानी लागनी पन बहु थोड़ा जीवो ने उपजे छे। गाथा 292 बोलो।
अथ धन सहित भवति स्फुटम इंद्रिय परिपूर्णतः ततः दुर्लभा, अथ इंद्रिय संपूर्णः तथापि सरोग भवे देह। वो स्फुटम में स्फुर अस्व करना, वो उकार है ना,
और
दुर्लभ में ल सिंगल। क्या कहते हैं अब? कहते अथ धन सहिता भवती, उच्च कुल भी मिला और धनवान भी हुआ। तो कहते वहां इंद्रियों की परिपूर्णता पाना दुर्लभ है। कुछ ना कुछ खामी होती है ना, किसी को सुनने में नहीं आते, कोई आंखों से उसकी कमजोरी है, अन्य अन्य कोई भी बातें। तो कहते इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं पाई जाती। और अथ इंद्रिय संपूर्ण, इंद्रिय से परिपूर्ण बराबर अच्छी हो तो भी क्या होता है, तथापि सरोग भवे देह, शरीर में कोई ना कोई रोग होते हैं, यानी कोई रोगी शरीर होता है या कोई रोगी अवस्था प्राप्त होती है उसकी। अर्थ देखते, वड़ी जो धनवान पणुपन पामे तो त्या इंद्रियों ने परिपूर्णता पामवी अति दुर्लभ छे। कदाचित इंद्रियों की संपूर्णता पण पामे तो त्या रोग सहित देह पामे पन निरोग होवु दुर्लभ छे। देखो एक 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 जिसको कहते हैं ना, हाँ, दुर्लभता
ऑब्स्टेकल डाले हैं बीच,
ऑब्स्टेकल्स पार करते करते यानी हम कहाँ पर है उसको सोच सकते हैं, कितने दुर्लभ में दुर्लभ बात अभी है हमारे पास, उसकी भी अगर हमें कीमत पता चले तो हम उसको यूं ही नहीं खोएंगे, ख्याल है ना।
हाँ। अब देखो दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, अर्थ के नीचे वाला। उत्तम कुल ने धनवान पनु पामे तो त्या पांच इंद्रियों की पूर्णता पामवी अति दुर्लभ छे। इंद्रियों वगैरह पूर्णता होए तो त्या शरीर रोगी होए, क्षय थाय। यानी ये स्वामी जी के जमाने में टीबी होना बहुत बड़ी बीमारी, जैसे आज के तारीख में कैंसर, फिर भी कैंसर का कोई ना कोई इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसे कई बीमारियां हैं कि बहुत अनक्यूरेबल होती है। वैसे उस जमाने में तो इसलिए क्षय था वो। आई आ बधु बतावानो हेतु पैसा के शरीर वगैरह नो महिमा बतावानो नथी, पन आवु मनुष्य पनु पामी ने अंदर आत्मानी समझन करवा माटे आ वर्णन छे भाई। आवु दुर्लभ मनुष्य पनु पामियो तो हवे एवु कर के आ संसार भ्रमण नो अंत आवी जाए। बोधि एटले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तेनी दुर्लभता छे, माटे तेनो प्रयत्न कर। बीजू तो अनंतवार मळी गयो मनुष्यपनु अने स्वर्गपन अनंतवार मळ्यु, पण अंदर मां चिदानंद स्वभावनु भान पूर्वे कदी कर्यु नथी, तेथी तेज खरेखर महादुर्लभ छे, माटे तेज करवा जेवु छे। अरे जीव मनुष्य भावना टानारे फरीने नहीं मळे, माटे आत्मानी दरकार करीने तत्वनी समझन कर। अत्यारे सब अवसर आ चुका है, टाणा आवे छे बोलते ने, उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया। माटे जे जी रीते आत्मानु कल्याण थाय तेवु कर। जो तो खरा मनुष्यपनामा धर्मश्रवणनी पण केवी दुर्लभता छे। 294 और 90 दोनों, 3 और 4 दोनों साथ में।
अच्छा दोनों जी हैं।
कोई बात
नहीं। अथ नीरोग भवति स्फुटम तथापि न प्राप्नोति जीवितम सुचिरम, अथ चिरकालम जीवति तत्शीलम नैव प्राप्नोति। पहले इसका अर्थ देख के फिर दूसरी गाथा देखेंगे। अथ नीरोग भवति, पहले कहा था कि हाँ सरोगी यानी रोगी हुआ, अब कहते कदाचित कोई निरोगी अवस्था वाला भी हुआ। तथापि न प्राप्नोति जीवितम सुचिरम, परंतु उसके लंबी आयु नहीं मिली। जीवित यानी उसकी जो लाइफ स्पैन है, छोटी आयु से उत्पन्न हुआ। अथ चिरकालम जीवती, अब कहते किसी को लंबी आयु भी मिली फिर भी क्या, तत्शीलम नैव प्राप्नोति, जिसको ये भद्र परिणाम उत्तम उसके स्वभाव ऐसे उसको नहीं प्राप्त हुआ। देखो अर्थ देखते हैं, अथवा कदाचित निरोगपन थाय तो त्या जीवन अर्थात दीर्घायु न पामे। दीर्घायु समझते ना, लंबी आयु,
लॉन्ग लाइफ,
लॉन्ग लाइफ ए पामवू दुर्लभ छे। अथवा कदाचित दीर्घ आयु पण पामे, दीर्घ एने लंबी आयु, तो त्या शील अर्थात उत्तम प्रकृति भद्र परिणाम। भद्र परिणाम समझते ना, सरलता, हा न पामे तेथी सुष्टु स्वभाव यानी उत्तम भद्र सरल स्वभाव पामवो दुर्लभ छे। क्योंकि सरल स्वभाव ही नहीं होगा तो उसके तत्व सुनना, वो समझना, अंतर में उतारना, ये आगे के कार्य नहीं हो सकते। अभी दूसरी 294 नंबर की गाथा। अथ भवति शीलयुक्तः तथापि न प्राप्नोति साधु संसर्गम् अथ तमपि कथम अपि प्राप्नोति सम्यक्त्वं तथा अपि अति दुर्लभम्। वो ल सिंगल करना कहते, कदाचित वो शील युक्त भी हुआ, भद्र परिणामी सरल स्वभावी भी हुआ, तो भी न प्राप्नोति साधु संसर्गम यानी उसको जो सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई, साधु का संग नहीं मिला है, अन्य सज्जन पुरुषों की, यहाँ सज्जन है नहीं, वो तो उपदेश जिनके द्वारा प्राप्त हो, ऐसे अन्य ज्ञानी सम्य दृष्टि के उसको संपर्क में नहीं आया, उनका उसको लाभ नहीं मिला, सत्संगति नहीं मिली। अथ तमपि कथम अपि प्राप्नोति, वो भी किसी प्रकार से प्राप्त हो जाए उसको, तो सम्यक्तम तथा अति दुर्लभम, तो सुनाने वाला भी कोई मिले तो भी सम्यक्त्व की प्राप्ति होना तो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। अर्थ, कदाचित उत्तम स्वभाव पण पामे तो त्या साधु पुरुषों की संगति पामे नहीं, अने ते पण कदाचित पामे तो त्या सम्यक दर्शन पामू सत श्रद्धान थऊ अति दुर्लभ छे। पढ़ेंगे आप,
देखो नीचे का अर्थ देखते हैं, अथवा ये ऊपर का ही होना चाहिए, कदाचित निरोग थाय पण त्या तो जीवन अर्थात दीर्घायु न पामे, ए पामु दुर्लभ छे। ये निरोग की बात क्यों की है, देखो जो नारकी जीव होता है ना, वो जन्म से उसको कितना रोग होते मालूम है, मिनिमम 16 मैक्सिमम 96 रोग एट अ टाइम जन्मते ही, इतने रोगी होते हो तो ऐसा रोग निरोगी मनुष्य जन्मे तो कितना अच्छा। अब कहते हैं निरोगी पना मिला तो कहते उसकी आयु 2 साल की रही, 6 महीने की रही, क्या फायदा। ये इसलिए कह रहे हैं कि दीर्घायु न पामे, ए पामु इतले दीर्घायुष्य पामु ए बहु दुर्लभ छे, अथवा कदाचित दीर्घ आयु पण पामे तो त्या शीलत्ता अर्थात उत्तम प्रकृति भद्र परिणाम न पामे एवी तेथी सुष्टु एटले उत्तम भद्र सरल स्वभाव पामवो दुर्लभ छे। अभी बाकी की दुर्लभता हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान तय सूजे लोकारो सोवाणी मस्तका।